जब हम मैं अकेला ही नहीं, जो भी जहां भी जब कुछ पढ़ा जाता है या सुना जाता है तो उन बातों का जो भी उल्लेख होता है उस अध्ययन में या पठन में या फिर पाठन में या श्रवण में या कीर्तन में, तो उस बात का श्रवण वो बात भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकता है, और भी जिस बात का उल्लेख होता है तो उन बातों का या व्यक्तियों का नाम का रूप का गुण का लीला का स्मरण दिलाया जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर जिस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, जिस दृश्य का वर्णन हो रहा है, व्यक्ति या दृश्य लीला का हो, हमारे समक्ष शब्दों के रूप में तो प्रकट हो गई, वाक्यों के रूप में अक्षर, फिर उसके शब्द, फिर वाक्य, फिर अलंकार, फिर रचना, तो जो भी वर्णन हुआ उन वाक्यों से, फिर उसका मूर्ति धारण करती, अपना रूप धारण करती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को या ग्रंथों को भी कहो, इन जनरल रामायण को भी कह सकते हो, या चैतन्य चरितामृत भी, ये वांगमय मूर्ति बन जाती है। वांगमय, वांगमय वाक्यमय, वांगमय में वाक वाक है, वाक मतलब वाचा, वाचा से कही हुई बातें या शब्द, फिर वाक्य, तो वो वाक्य वो शब्द मूर्ति धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। तो शास्त्र ये है कि शब्द से रूप आता है, शब्द से रूप आता है, या फिर शब्द ही रूप है, ये भी समझ है। From sound comes the form, फिर और भी बात है। बाइबल में भी कहा है, in the beginning there was a word, the word was with God, the word was God। प्रारंभ में तो शब्द ही था, शब्द, और वो शब्द भगवान के पास था, वो शब्द भगवान का था, वो शब्द भगवान ही थे, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। थोड़ा सिद्धांत या मेल खाता है, या तो हम दोनों में चल रहा था, ऑडियो चल रहा था और वीडियो चल रहा था, शब्द भी हम सुन रहे थे और उसका रूप को भी देख रहे थे, या तो थोड़ा कुछ मैकेनिकली या वीडियो ओवरहेड प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर के साथ हम देख रहे थे दीवार पर, लेकिन हमारे अंदर भी वो दीवार, यह तो दीवार है, पर्दा बनाया उसका, हमारे अंदर भी पर्दा है। स्मृति पटल कहते, स्मृति पटल, स्मृति का एक पर्दा है। तो इन शब्दों की, इन वाक्यों को, मंत्रों को, मंत्र किसी व्यक्ति का संकेत करता है, एक व्यक्ति का दर्शन के लिए मंत्र है, वह हमारे स्मृति पटल पर ही उसका दर्शन। ऑडियो और वीडियो दोनों भी हम ही कहेंगे, या और कोई कह सकता है, हम सुन रहे हैं या हम भी पढ़ रहे, तो हम ही कुछ कह रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं। पढ़ना मतलब क्या होता है? पढ़ना मतलब श्रवण कीर्तन होता है। ये वो ग्रंथ कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन ग्रंथ कीर्तन कर रहा है, और श्रवण कौन कर रहा है? हम श्रवण कर रहे हैं। जो पढ़ रहा है, तो भगवान ने कीर्तन किया, श्री भगवान उवाच, या नारद मुनि उवाच, वाल्मीकि ऋषि मुनि उवाच, श्रील प्रभुपाद उवाच, इन्होंने कहा, कईयों ने कहा है, सत्य कहा है, तो वे कीर्तन कर रहे हैं। हरि सर्वत्र गीयते कहा है शास्त्र में, हरि का गान कीर्तन सर्वत्र हुआ है, आदौ मध्ये अन्ते हरि सर्वत्र गीयते, हरि का गान सर्वत्र। तो उस गान का, कीर्तन का, कीर्तयन्तो माम भगवान का, सदैव कीर्तन। फिर वो कीर्तन नाम कीर्तन हो सकता है, या गुण कीर्तन होता है, कभी लीला कीर्तन होता है। आज लीला कीर्तन होगा कहते हैं, बंगाल में वगैरह जाओगे तो वहां आज लीला कीर्तन है। तो नाम का कीर्तन, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान, ओ आई डोनेशन उन्होंने दिया, हमारे गुरु महाराज का आई डोनेशन कैंप, और उन्होंने हमको आंखें दी, दृष्टि दी, चक्षुर उन उन मिलितम, हमारी आंखें खोल दी उन्होंने, ये आंखें नहीं और भी आंखों का एक सेट है, इन आंखों के अलावा दिव्य चक्षु, आत्मा का अपना चक्षु है, आत्मा की अपनी आंखें हैं। अरे वाह, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, फिर आगे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ये तो बात है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो रहा है, मतलब उस दिव्य ज्ञान को हम देख रहे हैं, ज्ञान को देख रहे हैं, ज्ञान का हुआ विज्ञान, या ज्ञान का हुआ साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्णा गॉड रियलाइजेशन के सारे दर्शन हो रहे हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित में दर्शन हो रहा है। स्मृति पटल पर हम देख रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं वो लव और कुश, जब रामायण की कथा सुना रहे थे, अभी अभी सुनाना प्रारंभ किया, बड़े कुशल वक्ता थे वे, तो सुनने वाले श्रोता ये बड़े बड़े ऋषि मुनीज दो इन सुकुमार बालकों के मुखारविंद से राम की कथा जब वे सुनते तो उनके कमेंट्स हुआ करते थे, आप ऐसी कथा सुनाते हो, ऐसी कथा सुनाते हो, वो तो घटना पहले घटी हुई है लीला, लेकिन जब हम सुनते हैं तो लगता कि अभी अभी हमारे समक्ष वो परोक्ष वाली लीला परोक्ष बन जाती है, प्रत्यक्ष प्रतिअक्ष आंखों के सामने या समक्ष। ऐसी संस्तुति ऋषि मुनि कर रहे थे लव कुश के कथा, ओ आपकी कथा, तो जब हम सुनते तो वो लीला जिसका आप वर्णन करते हो हमें दिखाई देती है, मानो हम देख रहे हैं, या आप भी उसको देखते देखते ही वर्णन कर रहे हो तो हमको सुनते सुनते वो दिखाई देने लगती है। ऐसे वक्ता भी और ऐसे श्रोता भी, ये बातें तब तक वैसे रजिस्टर नहीं होती जब तक हम लोग सुनते नहीं, लेकिन हर बात हम सुनते कहाँ है, या तो सोते हैं या जगह भी है तो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, उत्कंठित होके नहीं सुनते, श्रद्धा से नहीं सुनते, और क्या हुआ, क्या अंतर हुआ, वह भी कहा था। कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन आप एक ही व्यक्ति को वैकुंठ ले जा रहे हो। गोकर्ण ने कहा आप वैकुंठ से आए हो, विष्णुदूत या हरिदास एक छोटा सा हेलीकॉप्टर लेके आए, आप जंबो जेट लेके आते, या तो हजारों श्रोता कथा सुन रहे थे, लेकिन आप एक व्यक्ति को ही इशारा करके बिठा रहे हो हवाई जहाज में, तो हुआ क्या, हुआ क्या, व्हाट हैपन। मैं तो समझ रहा था कि सभी तो सुन रहे थे। तो हरिदासों ने कहा हमने नोट किया है, बैठे तो सभी थे, उनके शरीर तो यहाँ थे ही, लेकिन हरे का मन यहाँ नहीं था, दिल्ली दौड़ रहा था और कहीं दौड़ रहा था, घड़ी की ओर दौड़ रहा था, घड़ी ये प्रसादम हॉल की ओर दौड़ रहा था, कई बार प्रसादम हॉल से लौट आया, गया और आया, किचन में भी देखा तैयार है कि नहीं, ऑफरिंग भी हुआ कि नहीं थोड़ा चेक कर रहा था मैं। श्रद्धा से नहीं सुना, श्रद्धा का अभाव रहा, जो आदो श्रद्धा का है, आदो उसी का अभाव, हरि नाम सुना लेकिन हरि नाम में श्रद्धा ही नहीं थी, या फिर सुन भी लिया तो वहीं पर बात समाप्त नहीं होती है, वहां तो प्रारंभ होती है। श्रवण से प्रारंभ होती है, सुनी हुई बातों को पुनः पुनः उस पर मनन करना होता है। मनन श्रवण के सुनी हुई बातों को उसका चिंतन, उस पर विचार, उसका मनन, कंटेम्प्लेशन, रिफ्लेक्शन, ऐसे कई सारे शब्द भी है। पशु फटाफटो घास वगैरह खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन पहली बार जो पशु खाते हैं उससे उनको उस घास से या जो भी खाद दिया वे लाभान्वित नहीं होते, और स्टोर तो हो जाता है जो झटाझट फटाफट जो खा लिया, थोड़ा सा चबा के पहुंचा दिया पेट में, फिर पशु क्या करते हैं उसी खाए हुए घास इत्यादि को क्या करते हैं, चुगाली करते, रवंत मतलब चूइंग द, नॉट च्यू बट चूइंग द कर्ड, कहते जो खाया हुआ, पहला खाया हुआ घास पुनः मुख में लाते हैं, उसको भली भांति चबाते हैं। दांत अगर 32 दांत है तो 32 बार चबाना होता है मनुष्यों को भी, चबा के खाया हुआ तो गोल्डन रूल भोजन में 32 बार चबाओ, फिर हम क्या करते गया तो उसे कुछ इनडाइजेशन भी हो सकता है, कुछ सारे रस नहीं मिक्स हुए उसके साथ, तो कुछ पदार्थ वैसे मुख में ही उसका डाइजेशन होता है, होना चाहिए। तो पशु दो बार खाते हैं, तो दूसरी बार जो खाया हुआ चबाया हुआ फिर उसका रस बनता है, रस बन गया, फिर उसका रक्त बन गया, फिर मांस बन गया, फिर अस्थि बन गई, फिर मज्जा बन गई, फिर वीर्य बन गए, सब बनते जाते हैं। तो श्रवण की हुई बातों को उन हरिदासों ने जो वैकुंठ से आए थे उन्होंने कहा कि ये समस्या रही, श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया, वो बात वही छोड़ दी, पुनः कभी नहीं सोचा उन बातों के संबंध में, कभी चिंतन नहीं किया। तो ये जो श्रवण है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, कैसे रखो वंदनम मैदान में रखो थोड़ा, और सख्यम इसमें कुछ छूट गए, फिर क्या आत्मनिवेदनम, तो नवविधा भक्ति, ये नवविधा भक्ति तो भगवान के धाम में भी है। तो एक स्थान पर चलो प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, हम लोग का जो डिवोटीज हैं इस्कॉन के डिवोटीज भी है, या संसार के संसार में है हम लोग, गरीब साधक है, मैनेजर्स है, प्रचारक है, और कई सारे विभाग के प्रमुख या अलग अलग सेवा करने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारी दो प्रकार की एक्टिविटीज या गतिविधियां होती है, होनी चाहिए, होती है। एक को कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोशनल सर्विस, जैसे प्रभुपाद ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम भगवान के दास है, जीवर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। ये क्या हुआ, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, वैज्ञानिक, संवैधानिक, संवैधानिक मतलब सदा के लिए हम जीव है, तो उसका पोजीशन ये है, ये स्थिति है, ये पदवी है, दास है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज कहो या डिवोशनल सर्विस भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ सेवाएं जीव के साथ सदैव शाश्वत जुड़ी हुई है। इस संसार में भी जब तक संसार में है, और भगवान के धाम में जब पहुंचेगा मुक्त भक्त, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड हुआ उसका, अमी जातो, राम राम, वहां पहुंच गए, तो कुछ एक्टिविटीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक, तो वो यहां भी रहेगी और वहां भी रहेगी। जैसे हम कल भी कह रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र तो साधन भी है और साध्य भी है। यहां भी हरे कृष्ण मंत्र का हम जप या कीर्तन करते हैं तो वहां भी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल। शास्त्र में ऐसे भी कुछ मंत्र तो वैसे हमें थोड़ी मदद करते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन वे गोलोक या वैकुंठ के द्वार पर वे वही रुकेंगे, लेकिन महामंत्र तो साथ में जाएगा, भगवान के धाम में भी वहां होगा। क्योंकि मंत्र और शास्त्र भी उसके भी प्रकार है, तमगुण है, रजगुण है, सत्वगुण, तमगुणी पुराण, रजगुणी सत्वगुणी पुराण बताए, लेकिन भागवत तो गुणातीत है। तो कुछ शास्त्र कुछ मंत्र इसी संसार में थोड़े को मदद करेंगे, लेकिन अंततो तो गत्वा हरे कृष्ण महामंत्र तो साथ में जाए। तो कुछ एक्टिविटीज केवल हम इस संसार में जब तक है तब तक ही करेंगे, वह मैनेजमेंट नहीं है। वह टेंपल प्रेसिडेंट होंगे क्या, या कभी कभी कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है वैष्णवों को भी, वह होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और भी सोचने पर वो लिस्ट बन सकती है और थोड़ी विस्तृत। तो कुछ कार्य तो हम केवल यही करेंगे, यही इसी संसार में, उसको डिवोशनल सर्विस तो कहते हैं, क्योंकि उसका संबंध से प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना दूसरा होगा, फल्गु वैराग्यम कथ्यते मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो जिनका भगवान के सेवा के साथ संबंध है, डो टेलिंग और एक्टिविटीज, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज है जिनका भगवान के सेवा से संबंध है या इस जगत में ही ऐसे कुछ सेवाएं हैं, जैसे कोर्ट कचहरी की बात कही या लैंड मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स या नहीं फंड रेजिंग वगैरह वह होता है कि नहीं, वहाँ तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, या लक्ष्मी तो कैसी है, गोलोकेर प्रेम धन, प्रेम धन से पेट भरता है वहाँ, या प्रसन्न होता है, तृप्त होता है आत्मा। तो यहाँ का धन अलग, वहाँ का धन अलग, यहाँ के कुछ कार्यकलाप जो वैष्णवों को भी करने पड़ते हैं, तो वे कार्यकलाप वहां नहीं होंगे। और श्रील प्रभुपाद उस्ताद प्रेम ये भी लिखते हैं, आप समझ रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहां भी सेवा सेवा है, और थोड़े में जो नवविदा भक्ति है, नवविदा भक्ति हम लोग यहां भी करते हैं, वहां भी होगी, उसी के अंतर्गत मान लो और भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेवाएं हैं। लेकिन कुछ सेवा तो इस संसार की ही है, तो इस संसार वाली जो सेवाएं हैं जिसको हम करते हैं, अगर हम सावधान नहीं है, अभी थोड़ा ज्यादा नहीं कहेंगे, अगर हम सावधान नहीं है तो वो सेवा हमको पुनः बंधन में डाल सकती है, वो सेवा हमारा जान ले सकती है, मतलब गला काटना, मतलब हम थोड़ा बंधन में आ सकते हैं वो सेवा करते करते, और ढंग से नहीं की, सावधानी से नहीं की, या प्रेसिडेंट की भी सेवा है तो मैं धीरे धीरे मैं विशेष हूँ, उसमें अहम आ सकता है, मुझसे थोड़ा कुछ किस्सा कुर्सी का बन सकता है, है तो प्रेसिडेंट और सेवा है, लेकिन आसक्त हो सकता है, जीव और स्वरूप है कृष्ण और नित्यदास, इस बात को भूल सकते हैं, या दोनों भी साथ में चल रहा है, हम कृष्ण के भी दास है और भी बॉस भी है, दास भी है और बॉस भी है, या फिर अभी नहीं कहेंगे, तो इतना ही नोट करना और सोचो आगे कि दो प्रकार की एक्टिविटीज हमारी इस संसार में, एक आत्मा के शुद्ध आत्मा जो हमारी स्थिति, हम जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो जीव की जीव जिसमें स्वयं इन्वॉल्व होता है, सक्रिय होता है, ऐसी सेवा है आध्यात्मिक दिव्य शाश्वत नित्य नित्य सेवा। नित्य सेवक है तो जीव स्वरूप है कृष्णेर, नित्य दास है तो नित्य सेवा भी है, और दास नित्य है तो फिर उसके बाद भी नित्य है, तो कुछ नित्य सेवा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो कुछ सेवा वैसे यहीं पर है, वहाँ पर वो सेवा वहाँ नहीं है, तो तुम्हें ये देखना है। वैसे हमारी इस संसार की जो सेवाएं है, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, फंड रेजिंग, लीगल, दिस दैट, पब्लिक रिलेशंस, ये सेवाएं वैसे तब वो उसका आध्यात्मिकीकरण या स्पिरिचुअलाइजेशन कृष्णाइज्ड हो जाएगी वो सेवा, दिव्य तब तक बनी रहेगी जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेवा है आत्मा से, आत्मा की जो नित्य सेवाएं हैं, और उसको अगर हम विधिपूर्वक उसको संपन्न कर रहे हैं, तब हम उन सेवाओं को उसका जो नेचर है उसमें जो प्रापंचिकता है, तथा कथित प्रापंचिकता मतलब सांसारिकता या भौतिकता है, उसका उसका स्वरूप हम कुछ बदल सकते हैं, उसका नेचर हम बदल सकते हैं, उसमें हम फिर फंसेंगे नहीं, बद्ध नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। तो वह हमारा जोर, हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोशनल सर्विसेज है, आत्मा की नित्य सेवाएं हैं, वो नित्य प्रति उसको करते रहना चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल सेवा में ये जो संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन है, हरे कृष्णा ये क्या हो गई, नित्य सेवा हो गई। इसको करते रहना है, इसको नियमित रूप से। एक समय मेरे मंदिर के अध्यक्ष, विषय परिवर्तन है या है भी नहीं, देखते हैं क्या होता है, मंदिर में जप कर रहे थे तो उनको मिलने के लिए एक बहुत बड़े डोनर्स एंड पैटर्न मेंबर्स आ गए। तो प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहते थे, तो मैंने उनकी सहायता करना चाहा और प्रेसिडेंट को मिलके मैं उनको बताना चाह रहा था कि कोई फलाने व्यक्ति आपको मिलने आए। तो मैं जब मैंने उनको ढूंढा तो वो मंदिर में मिले और मैंने देखा कि वो जप कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे से फलाने आजीवन सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको कहो कि आई एम बिजी नाउ, मैं व्यस्त हूं अभी। तो ये जब मैंने बात उनसे सुनी तो मुझे आश्चर्य लगा, आप तो कल बैठे ही हो, आप बिजी थोड़े ही हो। मैंने ये भी सोचा कि ये तो ऐसा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको कहो कि जाके कहो कि माय प्रेसिडेंट इज बिजी नाउ। तो वो बात बताने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन सोच रहा था कि हमारे प्रेसिडेंट साहब तो बिजी तो नहीं थे, लेकिन मुझे कह रहे कि तुम कहो उनको कि मैं बिजी हूं, अभी नहीं मिल सकता। तो उस वक्त तो मैंने वैसे ही सोचा था जो आपसे कहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वैसे मुझे समझ में आने लगा या मैं समझा, चैंटिंग हरे कृष्णा ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो बिजनेस, और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस या सेवा है। तो कोई बैठे बैठे या वह चलते फिरते बैठे बैठे ही कहो, वही उचित आसन है बैठ के जप करने का। तो कोई जप कर रहा है तो वो बिजी है कि नहीं, हाँ इज वेरी बिजी। लेकिन हम नहीं समझते, कई बार हम नहीं समझते कि ये भी कोई महत्वपूर्ण व्यस्तता है, बिजनेस बिजीनेस। हमारा जो दृष्टिकोण होता है, फिर हमारे खुद के जप के प्रति भी या औरों का भी जो जप है उसके प्रति भी, कि कई सारी अधिक इम्पोर्टेंट बिजनेसेस है, दिस इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, इसको कभी भी बीच में रोका जा सकता है, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, ये नॉट अ वेरी सीरियस, एक गंभीर व्यस्तता नहीं है, आप समझे होंगे हाँ कहने का क्या तात्पर्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल इटर्नल डिवोशनल सर्विस है, यही से नींद आ रही है। सोना विवाह होता है क्या? नहीं, कम से कम कृष्णा तो कभी प्रैक्टिकली कृष्ण नेवर स्लीव्स, या कुछ सोने का थोड़ा स्वांग ही कर लेते हैं भगवान। यशोदा कुछ दूध पिला के सुला के स्वयं सोने के लिए जाती है, कृष्णा दौड़ पड़ते हैं, किसी वन में जाते हैं, मुरली बजाना प्रारंभ करते हैं तो सारी गोपियां आ गई। या उनका सोना भी अगर कोई सोते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस स्वप्न देखते होंगे, कृष्ण का ही स्वप्न। फिर दूसरी एक मांदा जी थी, उसी अपनी जप माला जप की थैली झोली बहुत मोटी थी, इसमें माला भी रखती और अपना मोबाइल फोन भी रखती वहाँ पर, हैंडी प्रैक्टिकल, कुछ चेंज वगैरह कहीं शॉपिंग के लिए जाना है तो पर्स भी उसको बनाने उसको पर्स बना लिया था। कहीं चली गई बाहर घूमते फिरते और कुछ शॉपिंग करने का विचार आया तो पैसे भी होने चाहिए, पर्स भी, कोई बिल वगैरह आ गए तो उसी को वहाँ रख देती थी। और घूमती फिरती ऐसी अपनी झोली को खूब हिलाते हुए जब करने का उसका प्रयास रहता था तो बीच में कुछ आ गया तो कुछ हाथ से उठा लेती थी, किसी को मिटा लेती थी, काफ़ी एक्टिव रहती थी, चैंटिंग एंड मिक्सिंग ऑल द सर्विसेज। क्योंकि साइकिल से चलाती तो एक हाथ में जप माला भी है और ऐसे पकड़ के चलती है, ऐसे उसके दिन बीत रहे थे इस प्रकार, जप करती हुई घूमती हुई फिरती हुई, बीच में मोबाइल फोन किया, शॉपिंग के लिए भी गई और कुछ बिल भी रख दिए, कोई आ गया तो बड़े सोशल बातें करने लगती थी, ऐसा हुआ वैसा, ए यू नो। तो जब करती करती एक दिन उसने अपने थैली में देखा, जब बीट बैग में तो वह बीट्स ही नहीं थी, ना जाने कब से अंदर माला ही नहीं, हाथ हिलाती थी ऐसी। तो एक माता के जप की कहानी, तो ध्यान पूर्वक जप का ये कुछ अच्छा उदाहरण है। जप करे तो माता जैसा करे, बिना माला से ही करे। फोन करते करती रहे वाज वेरी एक्टिव वेरी बिजी। तो ये दिस इज नॉट द सेम जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे थे और जब कर रहे थे मंदिर में भगवान के विग्रह के समक्ष, उसको भी हम नहीं समझ रहे थे, यू आर नॉट बिजी, तुम तो व्यस्त नहीं हो। लेकिन दूसरी माता जी तो व्यस्त रहा, वॉज वेरी बिजी वेरी बिजी। वो तो समझ रहे थे कि आई एम ऑल्सो चैंटिंग, आई एम बिजी विद द चैंटिंग, लेकिन चैंटिंग में तो थोड़ा ही समय उसका, अधिकतर वो और ही कार्यकलापों में व्यस्त रहा करते थे। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए क्या करना है? ध्यान पूर्वक, ध्यान, ध्यान किसका? ध्यान, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, इसी ने कहा था कौंडिन्यपुर में, उनके समझ में नहीं आया। हम लोग ध्यान पूर्वक कह रहे थे, जो प्रश्न का प्रश्नोत्तर का सेशन आया तो उन्होंने प्रश्न लिख के भेजा कर दिया, महाराज वो ज्ञान पूर्वक जब करने का आप कह रहे थे और समझाइए ज्ञान पूर्वक। अच्छा लगा कि ये ध्यान पूर्वक जब कैसे करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक जब करेंगे, ज्ञान पूर्वक जब करेंगे तो ये ध्यान पूर्वक जब भी होगा, या जब का जो ज्ञान है, जब करने के संबंधित जो ज्ञान है, विधि विधान है, विधि है, निषेध है, उसको भली भांति समझ के ध्यान ध्यान तो जब का ध्यान जब हरे हरे पर फोकस होना चाहिए, कृष्ण लक्ष्य, लक्ष्य पूर्वक, मराठी में क्या कहेंगे, लक्ष्य पूर्वक चल रहा क्या? लक्ष्य पूर्वक मतलब क्या? हाँ नहीं, अब थोड़ा सोचो, लक्ष्य क्या होता है? हाँ गोल, तो एक पर्यायवाची शब्द हो सकता है, लेकिन उससे भी लक्ष्य थोड़ा और फोकस है। तो लक्ष्य पूर्वक जब करें तो जब में लक्ष्य क्या है? कौन लक्ष्य? कृष्ण प्रेम तो लक्ष्य फल होगा, कृष्ण प्रेम तो फल हुआ, पर लक्ष्य भी हुआ, फल भी हुआ। पोजीशन प्राप्त करना भी लक्ष्य है, लेकिन जब जब के समय क्या करना, क्या लक्ष्य है? यस, नाम का लक्ष्य, नाम ही लक्ष्य है, और नाम का लक्ष्य, नाम हमारा लक्ष्य है, नाम का श्रवण हमारा लक्ष्य है। श्रवण के जब करते हैं तो और भी लक्ष्य है इसका, ध्यान करें जो जो नाम लक्ष्य पूर्वक कह रहे हैं उसका श्रवण, और फिर स्मरण करें ये हरे का, ये ध्यान करना मतलब कुछ विचार है ऐसे कभी कह रहे थे, हर नाम का के साथ कुछ विचार है, कुछ ध्यान है, मेडिटेशन, ना फुली फोकस्ड आप हो, आर यू फोकस्ड नाउ? फिर तो अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, सुन भी अपलक मतलब तो कुछ तो अलग को प्रयास करके खोल रहे हैं तो कभी कभी फिर, लेकिन जो जगह ही है नेत्र खुले हैं, भगवान का जब दर्शन होता है तो भक्त क्या नहीं हो चलती या द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज पसंद नहीं करते, गोपिया कहती कैसा है बुद्धू ब्रह्मा, ऐसी आंखें दिए थी उसने, जो क्या करती रहती पलक 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 रहती उसने, जब भी अपनी बंद होती है ऐसी क्यों नहीं आंखें बनाई जो सदैव खुली ही रहे? क्या मैं से कुछ सोचा ऐसी क्यों क्यों खोलनी बहुत ही आंखें? ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं कि सांस तक सदा के लिए बंद रखे? इतना बढ़िया होता, बंद आके आराम, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, रिलैक्स, बुद्धू ब्रह्मा कहीं का आंखें खोलने की व्यवस्था की है। इतने बार खोले मन करे, मन ही क्यों नहीं रहता? तो आप सावधानी से या फोकस्ड हो, आप सुनो कहने पर, आप फिर अपनी आंखों से भी आप अलग नेत्रों से देख रहे थे, मतलब लक्ष्य पूर्वक, लक्ष्य व्यक्ति क्या कहने जा रहा है, व्हाट इज ही गोना से नेक्स्ट, क्या कहने वाले हैं, आई एम रेडी, मैं अब और कहीं पर नहीं हूं। फिर उस स्थिति में ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ है, किस इमारत बिल्डिंग में है, कहाँ बैठे हैं, बगल में कौन है नहीं है, हमारा सारा का पूरा फुल अटेंशन, पूरा ध्यान, बस जो भी लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट है, जो भी ध्येय है, इसका ध्यान करना है, फोकस्ड। और क्या क्या देख रहे हो, द्रोणाचार्य पूछे जब वे ट्रेनिंग दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाने की विद्या अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, पांडवों को, कौरवों को, दोनों को भी सिखाते थे। तो उन्होंने एक पेड़ की शाखा से टांग दिया था एक कबूतर, नॉट द लिविंग वन, उसका चित्र ही था, कहो हम लोग हिंसक बात क्यों करें, हिंसा की बात क्यों करें, कबूतर का, पंछी का एक चित्र ही बना के उसको लटकाए थे एक शाखा से। तो एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाते और उठाओ धनुष बाण, ओके उठा लिया। तो लक्ष्य तो था, बता दी तुम्हारा लक्ष्य है क्या करना है, वो पक्षी का, पंछी की जो आँख है वहां तुम्हारा बाण को पहुंचाना। तो एक ने धनुष बाण उठा लिया, अब क्या देख रहे हो, ओ कितना सुंदर आकाश है, नाइस ब्लू स्काई, ओके गेट आउट नेक्स्ट। ओ क्या देख रहे हो केशव, अंदर देखना, अंतर्मुख हो गए। तो क्या देख रहा, कितना सुंदर वन है, कितने सारे वृक्ष है यहाँ, कई सारे फूल खिले हैं, ओके गेट आउट नेक्स्ट। तो लक्ष्य तो ऐसी सोच के साथ अगर धनुष बाण उन्होंने उठा लिया और बाण चलाया तो आकाश में जाएगा या किसी पेड़ को बींध देगा, लक्ष्य बनाएगा, ओके क्या देख रहे हो, कितना ऊंचा पेड़ है, वो आकाश नहीं देख रहा है, वो आकाश और वन को नहीं देख रहा है, पेड़ को देख रहा है, जिस पेड़ में वो की शाखा में लटकाया उस पंछी को, लेकिन वो देख रहा था, अरे वृक्ष को देख रहा था। ऐसे करते 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 नैति नट देश, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा बाण नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुम्हारा कभी ब्रॉड माइंडेड, यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, तुम्हारी दृष्टि भी बड़ी दूर दृष्टि या विशाल दृष्टि वाले हो तुम,
सारा आकाश देख रहे हो, सारे वन को देख रहे हो, या तो एक पॉइंट। तो फाइनली एक विद्यार्थी हो सकता है अर्जुन, तो क्या देख रहे हो, आकाश देख रहे हो, ना हो सुंदर वन वगैरह, नहीं नहीं पेड़ को तो देखते होंगे, नहीं, और शाखा, शाखा भी नहीं दिखाई दे रही मुझे, पक्षी तो दिखाई देता ही होगा, नो, क्या देख रहे हो, मैं उस पंछी की आंख देख रहा हूं। तो द्रोणाचार्य कहे आगे बढ़ो, शूट। तो उस धनुर्धारी अर्जुन को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने धनुष बाण चलाया तो सीधे कहां पहुंचा, आपको भेज दिया। तो हमें बड़ी रहती आती ध्यान पूर्वक। आसान तो नहीं है, लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करना, यही तो साधना है, हर रोज प्रयास करना है। यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थितम्, ये चंचल मन से युक्त हम है और हमें कहा जा रहा है ध्यान पूर्वक जप करो, तो बड़ी चुनौती तो है, बिग चैलेंज। और चंचल मन और भी कई सारी परिस्थितियाँ, घटनाक्रम चलते रहते हैं संसार में, हमारे इर्द गिर्द, हमारा जिनसे कुछ संबंध भी होता है, निकट का या दूर का, तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कलयुग में भी कहो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए कहा है। और ये काम होगा किनसे, ये भी कहा है, कैसे होगा ये कार्य, बुद्ध सुमेधसा ये कार्य करेंगे। बुद्धिमान लोग, मतलब यार लिखे पढ़े ऐसी बात नहीं है कि हमें PhD है तो फिर अच्छा जब कर सकता है, तो उससे कीर्तन होगा, इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, क्या क्या ओवरसीज एजुकेशन भी कर लिया तो अब माला दे दो, अभी क्या करेगा, संकीर्तन करेगा, नहीं, इसकी शिक्षा, इसकी गुणवत्ता या बुद्धि, कुछ भिन्न प्रकार के बुद्धि के उपयोग से ये ध्यान पूर्वक जप होगा। तदाम बुद्धि योगम, भगवान ने दी हुई बुद्धि, गुरुजनों ने दी हुई, वैष्णव में दिया हुआ मार्गदर्शन, वो बुद्धि सहायता करेगी। और जब हमने यह अभी धनुष और बाण की बात थी कर ली, तो हम जब जप करते हैं तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के अनुसार हम लोग वैसे धनुष बाण चलाते हैं, जब जप करते हैं तो हर जप करता को धनुष बाण चलाना है। तो धनुष बाण जब एक होता, एक हुआ धनुष, दूसरा बाण हुआ, और धनुष बाण और क्या होता है फिर, लक्ष्य होता है, वेरी गुड। एक हुआ धनुष, दूसरा हुआ बाण, तीसरा हुआ लक्ष्य। तो ये जो और फिर ऐसे धनुष बाण धारण करने वाला वो धनुर्धारी भी, तो धनुर्धारी भी है, हाँ धनुर्धारी भी है, देखते कैसा होता है इसमें, क्या कहते हैं, धनुष भी है, बाण भी है, और क्या है, लक्ष्य भी है। तो भागवत मुझे उस बात, तो प्रणव की बात की है, कभी आपको श्लोक, तो जो हुआ मंत्र है धनुष, मंत्र, यह हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है धनुष, और जीवात्मा है बाण, जीवात्मा ही बाण है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कौन है, नाम लक्ष्य है, ओके, और भी कहो, नाम ही क्या है, नाम ही रूप है, नाम ही कृष्ण है। तो यहां पर कहते हैं ऐसे नाम धनुष भी है, कहा हमने, अरे मंत्र, मंत्र ये धनुष, तो नाम धनुष है, और बाण के उपयोग से धनुष चलाया तो इसका लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण, या उसे साध्य साधन और साध्य एक भी है, भेद नहीं है उस दृष्टि से, ऐसा नाम ही है धनुष,
नाम ही है लक्ष्य भी है और नाम ही भगवान है, तो उस बाण का लक्ष्य भगवान है। धनुष का क्यों उपयोग होता है, बाण को क्या करता है धनुष, गति देता है, वेरी गुड, गति देता है, लक्ष्य तो कहीं भी पहुंचा सकता है उस गति से, आकाश में भी जा सकता है, वन में भी गिर सकता है, दिशा तो anyway, how you hold, कैसे पकड़ते हो। अर्जुन ने कहा, क्या कहा, आप तो मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो लेकिन मेरी स्थिति तो देखो क्या हो रहा है, गांडीवम संस्रते हस्ता मुखम च परिशुष्यति, और क्या शरीर कांप रहा है, कला सूख गया, हाथ हाथ से गांडी छूट रहा है, तो हाउ कुड आई फाइट। तो वही हम जब धनुष महामंत्र का धनुष तो हमारे पास है लेकिन वही हिल रहा है, हमारा मन डुल रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे क्या, तुम युद्ध ही नहीं करेंगे, धनुष पकड़ में नहीं आ रहा है मन के पकड़ में नहीं आ रहा है धनुष, या मन दौड़ रहा है और कहीं दौड़ रहा है, मन पकड़ना ही नहीं चाहता धनुष को, तो जब धनुष भी स्थिर है और उसको पकड़ने वाला मन है या धनुर्धारी का हो, वही हिल रहा है, वही कांप रहा है, उसकी ऐसी परिस्थिति है जब के समय की, तो कैसा वो टाइट पकड़ेगा और कैसे फिर उसको खींचना भी है, पीछे खींच के कान तक खींचता है धनुष का, जो प्रत्यंच होता है, प्रत्यंच डोरी होती है, पीछे खींच के पकड़ तो लिया, और बाण को चलाने के पहले क्या करता है, क्या करता होगा, हाँ खींच तो ले लिया, अभी और क्या करा, अभी नेक्स्ट क्या है लक्ष्य। हम भी एनसीसी में थे, जब कॉलेज में थे तो हमने भी कुछ गोलियां चलाई है, किसी को खिलाई नहीं गोली वहाँ किसी को ऐसा ही मुर्दा बना के रखते थे, तो उनको भी हमने कभी हत्या नहीं की, हमसे हिंसा हुई नहीं, तो हमारी गोली तो होके आसमान में चली गई उसमें कंपटीशन भी होती, तो हम कभी जीते नहीं उस कंपटीशन में तो फोकस या योद्धा के लिए, धनुष बाण चलाने वाले के लिए माइंड हैज टू बी फोकस, क्वाइट, पूरा ध्यान के साथ लक्ष्य होके ना वैसी लक्ष्य देखे, लक्ष्य की ओर मेरा ध्यान है, लक्ष्य सामने है, तो फिर वो सावधानी से क्या करेगा, धनुष तो खींच के रखा है, अब इसको छोड़ेगा तो सीधे वो भगवान के लोटस फीट, भगवान के चरण कमल, भगवान का रूप, भगवान के लीला धाम पहुंच ही जाएगा। साधन अगर सही है तो फिर सिद्धि तो होनी ही है, साधना सिद्धि, साधन से सिद्धि, लेकिन साधन में ही कई त्रुटि है, अभाव है, गड़बड़ी है, ढिलाई है, हम सावधान नहीं है तो फिर हम आशा नहीं करते कर सकते लक्ष्य तक पहुंचने की या सिद्धि की पूर्णता की, योग की पूर्णता। ओके, एनी क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन
जल्द से है तो
यस।
I heard when you're chanting Hare Krishna, you're asking for service. So if you're chanting Hare Krishna and somebody comes and asks you to do some service,
if it's emergency, that's another thing. But under normal circumstances, you should just allow. He should, that commander or whatever authority should allow you to continue to chant Hare Krishna. I mean, you ask a little bit, or you just started asking for service a few minutes ago, or 5-10 minutes ago, and then someone has just come. So maybe your prayer has been heard. That's one indication. But let that, you know, prayer become more focused, more concentrated, condensed will to serve, or sincere prayer. As you go through chanting, it becomes more condensed. As one devotee said, you know, first several rounds, at least 4 or 5 rounds, and it takes me time to get my act together, you know, get focused, and mind is wandering, and I have to. So finally, I have succeeded, and then now I'm business. I'm kind of doing better job of attentive chanting or meditative chanting or prayerful chanting. So it is one sitting is one exercise from beginning to finish, and it brings you to higher levels, certain level of a degree of concentration and focus and attention, and but in the middle, you know, that's but always you, hey, there's emergency, that's another thing. But normally, and he should also do some better planning. He just whimsically thought of you doing that service, or maybe he just thought of that service and he thought of you, and maybe you should give that service to someone who is not chanting that time or free. You are busy chanting. So there's a lot of mismanagement on the manager's part or commander's part because he did not do his service properly, planning the whole day. This has to be done, this has to be done. And sadhana will do this and Aditi will do that and Yashoda Dulal does this time. Maybe he could tell you in advance. Maybe you could finish your rounds before you had to do that service. Yeah, we were in Tirupati. Well, this is not exactly like that, but we had to go for darshan and then devotees had to get up early. And they got up, some devotees got up very early and they chanted their rounds. So why did you get up that early? We have to go for darshan. We want to finish our rounds before we go for darshan. You're planning like that. I want to chant my rounds, not in the middle of the hustle and bustle and all these sounds and so many shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha and all this, in the middle of all this, so many. So we that's why we got up early, we have finished our rounds and we are ready for next service, which is going for darshan. Anyway, that may not be exactly the same thing that you are asking, but so some devotees, they do, you know, around their this darshan time, this service time, they maybe do chanting before, or they could plan, maybe I have this service also to do. Yeah? Okay, any other? Ajay.
प्रारंभिक अवस्था में जब सीरियस सावधानी पूर्वक जब प्रारंभ नहीं होता है उससे पहले मैंने पढ़ा है कि राधा रानी नित्यानंद प्रभु हरिदास
राधा क्या
राधा रानी और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की प्रार्थना करनी है जिससे कि उसके बाद सावधानी पूर्वक जब प्रारंभ होता है आपका क्या कहना है
वैसे ये प्रार्थना तो केवल नवशिक्षित या नए भक्तों के लिए ही नहीं है, प्रार्थना तो सभी के लिए है. इसीलिए भी हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि ये प्रार्थना ही है. हम भी करते हैं, आप भी करते हो. तो नए पुराने सभी के लिए ये प्रार्थना तो हम सभी को करनी चाहिए. चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कुछ भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं. ये नाम के भी आचार्य है. तो जप का जो सारा स्टैंडर्ड है, ध्यान पूर्वक जप या जो भी सर्वोत्तम ढंग का प्रकार का जो जप है उसको, वैसे एक विशेषण से हम एक ही विशेषण से अधिकतर हम लोग उसका वर्णन करते हैं. वो क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक जप. तो जप की और भी कुछ विशेषताएं या कुछ विशेषण हो सकते हैं उसको हम कहते हैं नहीं, लेकिन ध्यानपूर्वक जप. तो हरिदास ठाकुर ध्यानपूर्वक भी जप करते थे, श्रद्धापूर्वक भी जप करते थे, लक्ष्यपूर्वक भी जप करते थे, और कैसे कैसे जप करते होंगे, प्रार्थनापूर्वक भी जप करते थे, और कैसे करते होंगे, प्रेम पूर्वक जप करते थे, संख्यापूर्वक नाम गान नति भी संख्या पूर्वक भी नाम जप करते थे और कैसे दीनता के साथ, वेरी गुड, दीनता के साथ, विनम्र दैन्य के साथ, क्योंकि जप करना तो शरणागति है, शरणागति शरणागति की जो बातें हो रही है, तो शरणागति का अभ्यास कब होगा, जप के बाद या दिन में? शरणागति का सबसे अधिक अभ्यास तो जप के समय, तो शरणागति का समय है, भगवान के नाम का आश्रय, नाम आश्रय। तो शरणागति के सारे लक्षण भी वहाँ प्रदर्शित होंगे, शरणागति के जो विचार है वे भी जप के समय आएंगे, आने चाहिए। क्या क्या विचार है, क्या क्या विचार है, शरणागति मतलब क्या है, कौन से अंग है, अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल संकल्प, इसका अभ्यास करना होगा। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं जहाँ जप कर रहा हूँ, स्थान अनुकूल है, ये काल अनुकूल है कि नहीं है, कि प्रतिकूल है, कि मेरे पास में बैठे हुए भक्त अभी थोड़ी देर में बातचीत शुरू करना प्रारंभ करेंगे, कि क्या होगा, कि अनुकूल प्रतिकूल और अवश्य रक्षिवे कृष्ण और तो और भी जो लक्षण है, इन सब लक्षणों का विचार भी, भाव भी, इट्स अ होल सम चैंटिंग। जितना भी हमारा ज्ञान है, ध्यान है, या नाम रूप गुण लीला है, हमारा दैन्य है, हमारी सहनशीलता है, इसका भी उपयोग है, ये भी उपकरण है उसके। तो प्रेयर भी है, प्रार्थना भी है, तो प्रार्थना any other question?
हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। तो एक माला जप करने के लिए कभी कभी 7-7.5 मिनट समय लगता है, कभी कभी 10 मिनट लगता है, तो उसका आइडियल समय कितना है एक माला जप करने?
7 मिनट। सोलह माला का जब 2 घंटे में पूरा करने की बातें चलती है, सो दैट इज एवरेज। 1 घंटे में 8 माला हुई, 2 घंटे में 16 माला हुई, लेकिन कुछ कम समय में भी जब करने वाले वक्त भी, हरिदास ठाकुर उनकी माला कम समय में हुआ करते थे। तो मैंने कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट, एवरेज सरासरी 7.5 मिनट, क्योंकि सारा प्रोसेस या ध्यान पूर्वक जब भी करना है, सुनना भी है, हरे कृष्ण हरे, सारा मंत्र को सुनना भी है और साथ में सारे विचार भी है। तो 5 मिनट से कम समय अगर लगता है तो फिर कुछ पैशन आ गई, राजसिक था, दौड़ रहे, थोड़ा पैशन, और 10 मिनट से अधिक समय लग रहा है तो कुछ तमोगुण आ गया, तमोगुण में तो 20 मिनट लग जाते हैं। हमने भी अनुभव किया एक बार ऐसा, कभी रात्रि को विश्राम नहीं हुआ कुछ, और क्या क्या हो रहा है, तो समय समय उठ के देखते, माला बाहर निकाल के देखनी पड़ती, क्यों समाप्त क्यों नहीं हो रही है, शोक करते हैं। तो 7.5 मिनट या 2 घंटे में 16 माला, थोड़ा कम अधिक हो सकता है, लेकिन अधिक भी रफ्तार से भी नहीं और अधिक धीमी गति से भी नहीं, फिर इसमें और गुणों का प्रभाव आ सकता है. ओके, शुड वी स्टॉप हियर?
महाराज जी, हमारी संस्था के एक तो मैनेजमेंट संभालते हैं और दूसरे प्रचारक हैं, तो अपने प्रवचन में सुना कि वहाँ गोलोक वृंदावन में मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारे जो भक्त है जो मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए क्या पोजीशन होती है?
यही रहेंगे, यही रहेंगे. नहीं नहीं, लेकिन पहले प्रश्न का हमने उत्तर दिया है पहले भी. क्या कहा था? भूल गए? कौन कहेगा? एक व्यक्ति कहेगा. हमने क्या कहा था? एक व्यक्ति बोल, माइक्रोफोन लो. कौन?
कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस जो है वो डेली परफॉर्म करता
है. किसको? मैनेजर को करना है कि नहीं?
हाँ, मैनेजर को भी करना
है. ओके, तो फिर वो भी जाएंगे धाम, मैनेजर भी जाएंगे. लेकिन वहाँ भी मैनेजमेंट तो वृंदा देवी खूब मैनेजमेंट करती रहती है. ये ना कि व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है. आके वहाँ भी सेवाएँ, वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन, गोपी और सखी और फिर यूथेश्वरी और बड़ी ढंग से भगवान के धाम में सेवा, उसकी व्यवस्था, सब संचालन होता रहता है. वैसे लेकिन इस संसार में कोर्ट कचहरी वगैरह वहाँ नहीं होती. वैसे मतलब थोड़ा दिव्य दिव्य व्यवस्था, दिव्य संचालन वहाँ भी तो होता है. तो मैनेजर का दोनों करना है, नित्य सेवा भी करनी है, नित्य सेवा जीव की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अनुसार, और साथ साथ इस संसार की मैनेजमेंट जो है वो भी करनी है. और हमने ये कहा कि मैनेजर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेवा है संवैधानिक, वो कम करेंगे तो फिर वो जो मैनेजमेंट की सेवा है वो उनके बंधन का कारण बन सकती है. इसीलिए अधिक जोर हमारा तो ये जो दिव्य नित्य सेवाएं हैं, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये करने से फिर हम लोग मैनेजमेंट करते समय जो भी उसमें भी कुछ गुणों का प्रभाव या दुनिया से कुछ संबंध या धन या पदवी या उससे हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग अलिप्त रहेंगे. जैसे कमल का पुष्प जल में होते हुए भी वो जल भिगा नहीं सकता, उस भिगाता नहीं. तो हम संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलिप्त रहेंगे और संसार के बाहर जाने का प्रयास और उसमें सफलता हमको मिलेगी, भगवान के धाम जाने से. सचिनंदन
महाराज जी, आप बता रहे थे कि श्रवण के पश्चात मनन और आचरण की चर्चा आपने की थी, तो कुछ व्यवहारिकता में इसे कैसे बता रहे हैं, या फिर आप कुछ टिप्स बताइए इसे?
ये शायद आप कह रहे कि जो फुल टाइम डिवोटीज है उनके लिए ये संभव है और औरों के लिए नहीं है, क्योंकि जो संसार में है, गृहस्थ घर गृहस्थी में है. आई मीन चिंतन जो है, चिंतन जो है उसे व्यक्ति हर परिस्थिति में कर सकता है, इवन इन द टॉयलेट. इफ यू आर सो बिजी, लेकिन आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हर एक को ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है, तो ट्रैवलिंग के समय तो आप तो समझते कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी एक्टिविटी है, यही उपलब्धि है मेरी, आई हैव टू अचीव, आई एम हियर, वहाँ से वहाँ जाना है, उसी को हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाते वक्त जा भी रहे हो और फिर सोच भी रहे हो जो आपने सुना है, आपको कोई रोकेगा? Someone going to stop you? तो मोमेंट कई सारी होती है, सभी लोग, सभी भक्त, सभी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वेटिंग फॉर द बस आधा घंटा, तो वहां चिंतन करें, जो श्रवण किया है, जो पढ़ा हुआ है वहां चिंतन करें, या वही जब भी करे प्रयास करें, कई तो विघ्न तो आएंगे, कई सारी वो परिस्थिति नहीं है, उतनी आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल कर सकता है, जप करने का, स्मरण करने का, मनन करने का। तो जिसको इस बात का महत्व समझा हुआ है वो समय निकाल सकता है, बिजी से बिजी व्यक्ति या ऐसे बिजनेस के साथ भी, हाथ में क्या, हाथ में काम, मुख में नाम और मन में और क्या डालो, मन में ध्यान। ओके, जैसे वो कहते हैं जार श्री जार, जार कहते हैं जार, जिस किसी स्त्री का अपना तो पति है लेकिन उसका ध्यान तो जार कहते हैं, और पति में और पुरुष में होता है, तो वह तो घरेलू कुछ काम भी कर रही है, अपने पति देव वहाँ है, तो ऐसा कुछ उसकी चाल ढंग ऐसी होती है, वो दिखाती तो है कि आई लव यू माई डियर हस्बैंड, प्राण मोर तो जीवने मरने आप ही तो हो, लेकिन ये सब बाहर से कुछ कर रही है, कह भी रही है, लेकिन उसका ध्यान तो कहाँ होता है, इज ऑलवेज थिंकिंग उस पुरुष को मैं कब मिल सकती हूँ, कब मिलूंगी, मिलूंगी तो ये होगा, मिलूंगी तो वो होगा, तो इज बिजी, बिजी भी है और कुछ दिखा भी रही है कि मैं आपकी हूँ प्राण प्रिया, प्राण सखी, लेकिन वैसे उसका ध्यान तो और पुरुष में होता है, और कई होता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ उदाहरण देने वाला, इसका उपयोग कहा गया है कि संसार में भी हम लोग कई सारे कार्यों में व्यस्त है या कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन हमें अपना दिल उनको देने की आवश्यकता नहीं है, हमारा दिल तो रिजर्व फॉर श्री कृष्णा, या कुछ दिखावा या कुछ समाव गुजारा करना है, मेरा गेट थ्रू, तो मनन करना कोई चाहे तो हर व्यक्ति कर सकता है, फिर वो गृहे थाको वन्ने थाको, वन में रहने वाला ब्रह्मचारी सन्यासी है या घर में रहने वाला गृहस्थ है, सभी लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होता है हमारा, जो बिजी है बिजी है बिजी है कहने वाले उतने बिजी नहीं होते, दे आर सो मच टाइम, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, दिस इज वहां फेल कर जाते हैं, सो मच टाइम परमान। तो ध्यान वगैरह चिंतन मनन तो मन से होना है, तो एक्सटर्नली आप कुछ कर भी रहे हो तो मन में विचार और भी आ सकते हो सकते हैं, कभी कभी आपको पूरा फोकस होना होगा, लेकिन उसमें भी आप कुछ
थोड़ा शोक कर सकते हो, आई विश मुझे अगर ये करना ही नहीं होता तो अच्छा होता, ओ प्रभु कब ऐसे कार्यकलाप मुझसे बंद करवाओगे, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गेट इन्वॉल्व, आई हैव टू डू दिस, ये करना होता, ये करना पड़ता है, दया करो मोरे, मुझे मुक्त करो प्रभु, निकालो यहाँ से मुझे। दिस इज, ये भी आपका कृष्ण कॉन्शियस थॉट हुआ, और किसी गतिविधि में आप लगे हो जो फुली कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आप अगर अवेयर हो, इफ यू आर कृष्ण कॉन्शियस या कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहते हो, तो तुम सोचोगे कि मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ प्रभु भाई, आई एम नॉट हैप्पी, मेरी छुट्टी करो, मुझे मुक्त करो, तो फिर वे विचार आपको आने वाले कुछ दिनों में सालों में वहां तक पहुंचाएंगे, आपको मुक्त भी करेंगे। लेकिन वो विचार, वो ऐसे विचार छोड़ के, वो मनन चिंतन छोड़ के आप यू आर जस्ट फुल्ली अब्सॉर्ब्ड, कट ऑफ फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण कॉन्शियसनेस इत्यादि, तो फिर उसी में फंसे रहोगे, बंधे रहोगे, हृदय ग्रंथि और क्या कर्म ग्रंथि, संशय ग्रंथि, हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो वो ग्रंथि बनी रहेगी या और ग्रंथि बढ़ेगी, गांठ के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ। लेकिन ये जो विचार है, तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो जो तुम कार्य कर रहे हो उस कार्य से कहो सही, मन, मन क्या कर रहा है, वो कार्य करते समय मन क्या कह रहा, मन क्या सोच रहा है, उससे या तो फिर उससे आप बंधन में और बंधन में आ सकते हो या मुक्त भी हो सकते हो। तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज कुछ कभी मजबूरी है या कुछ और कर रहे, लेकिन मन अगर भगवान का विचार कर रहा है कैसे मुक्त हो सकता हूँ, क्या था वो द्वारा वही आ गया थोड़ा उदाहरण, मंदिर था, मंदिर में पुजारी और फिर दूसरी एक कोई स्त्री, उसका घर मंदिर से कुछ दूर नहीं था, तो मंदिर में शंख बज रहे है, घंटा बज रही है, चेतो दर्पण मार्जनम, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो पड़ोसी या उसमें से कोई एक स्त्री, उसको स्मरण उधा, मैं बेचारी यहाँ फंसी हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अच्छा होता मैं भी मंदिर में होती तो कितना अच्छा होता, भगवान के समक्ष होती मैं, घंटा की नाद, मंत्रों का उच्चारण, उसको स्मरण दिला रहे भगवान का, भगवान के पास आने की बड़ी उसकी तमन्ना है, लेकिन दुर्दैव से वो मंदिर में जो घंटा नाद और शंख नाद मंत्रों का उच्चारण करने वाला, वो जो भी वो पाखंडी अगर है, तो घंटा तो बजा रहा है, शंख ध्वनि हो रही, लेकिन मैं उस घर में कब जा सकता, आई विश आई वॉज देयर, उस घर में उसको मिल सकता था, उसके साथ बात हो सकती थी, कब होगी आरती पूरी, मैं दौड़ना चाहता उसको मिलना चाहता हूँ, उस घर में जाना चाहता हूँ, यू गेट द पॉइंट। तो एक मंदिर में है लेकिन उसका मन और कहीं, घंटा बजा रहा लेकिन मन और कहीं है, तो बेचारी वो स्त्री और कुछ क्या करती होगी, हाँ रसोई बना रही, झाड़ू लगा रही है, क्या क्या कर रही है, लेकिन उसने घर गृहस्थ के कार्यों से मैं कम मुक्त होंगे ताकि मैं दौड़ सकती हूँ, मंदिर जा सकते हैं। तो मन एव मनशानाम कारणम बंध मोक्षयो, एक मंदिर में ही है लेकिन उसका मन और कहीं दौड़ रहा है, जो मंदिर से बाहर है लेकिन उसका मन मंदिर दौड़ने का विचार है, इच्छा है। ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर क्योंकि